नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बृहस्पतिवार को हुए विधानसभा चुनाव में से किसी भी केंद्र पर पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की गई है। आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल के 44,000 से अधिक मतदान केंद्रों में से किसी में भी पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की गई है। राज्य में बृहस्पतिवार को पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा था, इसलिए किसी भी बूथ पर दोबारा मतदान की आवश्यकता नहीं है। पहले चरण में राज्य के 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हुआ था, इसमें रिकॉर्ड 92% से अधिक वोट पड़े थे। उधर तमिलनाडु में भी सभी केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा, इसलिए दोबारा मतदान कराने का कोई कारण नहीं है। राज्य में विधानसभा की 234 सीटों के लिए 85% से अधिक मतदान हुआ था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए मौजूदा मौसम का लक्ष्य 15% से बढ़ाकर 3,45,00,000 टन कर दिया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि यह निर्णय उन किसानों की सहायता के लिए उठाया गया है जिनकी फसलों को बेमौसम बारिश से नुकसान पहुंचा है। कल नई दिल्ली में रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वार्षिक गेहूं सर्वेक्षण के अवसर पर श्री चोपड़ा ने कहा कि अब मध्य प्रदेश से 1 करोड़ टन, उत्तर प्रदेश से 2.5 करोड़ टन, राजस्थान से 23,50,000 टन और उत्तराखंड से 5,000 टन गेहूं की खरीद होने की संभावना है। श्री चोपड़ा ने कहा कि गेहूं खरीद के लिए गुणवत्ता मानकों में ढील दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे 2026-27 में गेहूं के शुरुआती भंडार में लगभग 2,20,00,000 टन की वृद्धि होगी, जिससे देश में गेहूं की कुल उपलब्धता लगभग 5,65,00,000 टन हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। इससे बैंक के कारोबार पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लग गई है। रिजर्व बैंक ने मार्च 2022 में बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। वर्ष 2024 में भी बैंक पर अतिरिक्त व्यावसायिक प्रतिबंध के अंतर्गत मौजूदा ग्राहक खातों और प्रीपेड उपकरणों में किसी भी प्रकार के जमा, क्रेडिट और टॉपअप पर रोक लगा दी गई थी। अमेरिका ने चीन की एक बड़ी तेल शोधक कंपनी हेंगले पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी और ईरान के तेल की ढुलाई से जुड़ी लगभग 40 कंपनियों और टैंकरों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये कदम ईरान से तेल निर्यात को सीमित करने के लिए उठाया गया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कुछ सप्ताह बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच चीन में बैठक होनी है। गौरतलब है कि अमेरिका वैश्विक कच्चे तेल की ढुलाई के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी जारी रखे हुए है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची कल देर रात अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे। पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्ति के लिए ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता फिर से शुरू करने के लिए राजनयिक प्रयास किए जा रहे हैं। वार्ता में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई भी शामिल होंगे। अमेरिका भी राजनयिक संपर्क के जरिए समाधान के प्रयास कर रहा है और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर के इस्लामाबाद पहुंचने की संभावना है। 11 अप्रैल को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में हुई वार्ता में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई ठोस आश्वासन प्राप्त नहीं हो सका था। महिला टी20 क्रिकेट में 5 मैचों की श्रृंखला के चौथे मैच में आज भारत का सामना मेजबान दक्षिण अफ्रीका से होगा। जोहान्सबर्ग में ये मैच रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका इस श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त ले चुका है। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। दिल्ली में ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। एक अन्य मैच में जयपुर में शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल रात बंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।